हरे कृष्ण। रामनवमी का अवसर आने वाला है, इसीलिए भगवान राम की कथा को कह रहे हैं। कथा कहने से पहले उनको प्रणाम करेंगे, आप सब दोहराइए। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम, श्रीमती सीता देवी, भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, साथ ही साथ भगवान के परम मित्र श्री सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी के परम भक्त वायुपुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे रामायण की इस कथा में अरण्य कांड पर, तो चर्चा की थी कि भगवान चित्रकूट में थे, रामचंद्र जी ने सोचा कि अभी भरत मिलकर गया है, ये स्थान बहुत उसकी सेना आने से थोड़ा दूषित हो गया है, साथ ही साथ बहुत से लोग अब मिलने आने लगे हैं क्योंकि सबको पता चल गया है कि चित्रकूट में हैं श्री रामचंद्र। और फिर उन्होंने ये भी सोचा कि यहाँ पर रहकर बहुत ज्यादा स्मरण भरत का, कैकेयी का, कौशल्या का हो रहा है क्योंकि अभी अभी मिलकर गए हैं यहाँ से, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब आगे जाना चाहिए, अंदर और गहरे वन में जाना चाहिए। तो ये सोचकर उन्होंने दंडकारण्य में, दंडक अरण्य में प्रवेश करने का विचार किया और फिर श्री रामचंद्र जी वहां से चले। दंडकारण्य पहुंचने से पहले अत्रि मुनि के आश्रम में गए, देवी अनुसूया से मिले, कल हम लोग अनुसूया देवी की चर्चा कर रहे थे, और फिर देवी अनुसूया से मिलकर उनसे आशीर्वाद लेकर सीता देवी को उन्होंने आशीर्वाद दिए और फिर आगे दंडकारण्य में वो प्रवेश करने लगे। फिर उन्हें वहां पर विराध नाम का एक राक्षस मिला जिसका वध किया उन्होंने, उसको मार नहीं सके थे क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था, इसीलिए गड्ढा करके उसको गाड़ दिया और वैसे वो देवताओं की श्रेणियों में से विद्याधर था, तो फिर अपने स्वरूप को वो प्राप्त हुआ, अपना रूप उसने प्रकट किया और फिर भगवान ने उससे कहा कि आप जहां से आए हो वहीं वापस जाओ और मेरी भक्ति में लगे रहकर अंततः आप मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करोगे। तो फिर अब विराध का वध करने के बाद भगवान अब वहां दंडकारण्य में आगे जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, तो अब आगे की कथा को कहेंगे। जिस समय अब वो आगे बढ़ने लगे कि और अंदर जाएंगे, तो उनके हाथ में धनुष बाण था, सीता देवी ने धनुष बाण को देखा कि श्री राम अब वन में प्रवेश कर रहे हैं और धनुष बाण हाथ में लिए हुए, तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, उनको एक सुझाव दिया। श्रीमती सीता देवी ने कहा कि व्यक्ति को अधर्म के पथ पर चलने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती है, बड़ी जल्दी व्यक्ति अधर्म की ओर आकर्षित हो जाता है, हमारा कर्तव्य है कि हम धर्म के पथ पर चलें, और इसीलिए अब हम मन में प्रवेश कर रहे हैं, आपने ये जो धनुष और बाण हाथ में लिया हुआ है क्या ये प्राणियों को मारने के लिए है, पशुओं को मारने के लिए है? अगर ऐसा है तो ये हिंसा आप नहीं कीजिएगा। देखिए श्री रामचंद्र जी को सीता देवी ये सुझाव दे रही हैं। वैसे माना जाता है कि जब वैदिक सभ्यता में ऐसे लोग कहते हैं कि वैदिक सभ्यता में पत्नियों को कोई अनुमति नहीं थी कुछ कहने की, स्त्रियों को दबाया जाता था इत्यादि, लेकिन ऐसा नहीं था। यहां स्वयं सीता देवी जो सती शिरोमणि हैं, पतिव्रता शिरोमणि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को सुझाव दे रहे हैं और वो कह रही है कि हमें धर्म के पथ पर चलना चाहिए, अधर्म बहुत जल्दी हो जाता है, आप अपने इस धनुष बाण से प्राणियों को मत मारिएगा। पूर्व काल की एक कथा सुनाती हूं आपको। पूर्व काल में मैंने सुना है कि एक समय एक ऋषि बहुत कड़ी तपस्या कर रहे थे, वन में रहते थे, केवल तपस्या करना, बड़ी दृढ़ता से भगवान को प्राप्त करने के लिए लगे हुए थे। ऐसे में इंद्र ने देखा और इंद्र ने सोचा कि अगर इसने तपस्या ज्यादा कर ली तो शायद मुझ तक पहुंच जाएगा, मेरे सिंहासन को ले लेगा, तो उसकी तपस्या में भंग डालना था। तो क्या किया इंद्र ने, इंद्र आए, एक साधारण क्षत्रिय का भेष लेकर आए और एक तलवार दी उनको। तो उन्होंने एक तलवार इन तपस्वी जो बैठे थे, योगी जो बैठे थे, उनको दे दी, कहा कि ये तलवार बस आप थोड़े समय संभाल कर रखना, मेरी संपत्ति है, आप इसको केवल संभाल कर रखिए, मैं बाद में आपसे ले जाऊंगा। तो योगी ने कहा ठीक है, तो रख दिया। तो तलवार को बड़ा संभाल कर रखते थे क्योंकि किसी और की धरोहर है, किसी और को देना है, वापस देना है, तो बड़ा संभाल कर रखते थे। सीता देवी कहती हैं कि जहां भी जाते, वो स्नान करने जाते या कहीं और जाते वन में, तो साथ साथ में लेके जाते थे उस तलवार को। और केवल तलवार थोड़े समय साथ में रहने से, वो कहने लगी कि तलवार साथ में रही तो उनके हृदय में हिंसा की भावना आने लगी तलवार के रहने से। सीता देवी कहती हैं कि व्यक्ति को बहुत सावधान होना चाहिए, इच्छाओं से व्यसन उत्पन्न होते हैं। वो कहती हैं जब हृदय में इच्छा होती है तो उससे तीन प्रकार के व्यसन या तीन प्रकार के दुर्गुण या तीन प्रकार के पाप व्यक्ति करता है। तो वो कहती हैं कि ये तीन प्रकार के पाप क्या हैं? पहला वो कहती हैं कि ये तीनों इच्छाओं से प्रकट होते हैं। तो पहला वो कहती हैं कि झूठ बोलना, व्यक्ति झूठ बोलने लगता है, ये एक व्यसन है। व्यसन मतलब बहुत बुरी आदत, पापमय आदत, जिससे पाप उत्पन्न हो जाता है, तो व्यक्ति झूठ बोलने लगता है। हम सब भी ये जानते हैं, हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम सोचते हैं झूठ बोलकर बच जाएं। कोई हमारे हमसे गलती हो जाती है, हमसे पूछा जाता है, तो हमें उस गलती को स्वीकार करने के प्रशिक्षण नहीं मिला और हम सोचते हैं कि मैं कभी कोई गलती कर नहीं सकता या करूंगा भी तो दिखा नहीं सकता, कोई गलती मुझसे हो गई तो उस गलती को छुपाने के लिए हम झूठ बोल देते हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए कोई कहे आपने किया, नहीं मैंने नहीं किए तो उसने किया, बस हमारा काम हो गया, हम बच गए। तो ये झूठ बोलने की जो आदत है ये बहुत बुरी आदत है। तो पहला वर्णन सीता देवी करती हैं कि व्यक्ति को इससे बचना चाहिए, ये एक व्यसन है, बुरी आदत है और जो इच्छाओं से उत्पन्न होती है, क्योंकि सीता देवी कहती है अगर कोई इन तीन प्रकार के व्यसनों में लगता है तो निश्चित नरक की ओर जाता है, अधर्म करता है। तो इसीलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम जितना हो सके सत्य के मार्ग पर चलें। कृष्ण भक्त होने का अर्थ ये है कि हम सत्य की ओर मुड़ें। परम सत्य हैं भगवान श्री कृष्ण, और अगर हम परम सत्य की ओर नहीं मुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं, तो हमारे हृदय में निर्भयता नहीं आ सकती है, हमारे हृदय से इस जगत की आसक्ति नहीं जा सकती है, क्योंकि जो आसक्ति और भय है ये हमें सत्य से दूर रहने से मिलता है। सत्य से दूर रहने के ये दो आपको लाभ है, आसक्ति और भय, बस इस जगत में मिलेगा। अगर आप सत्य से दूर हैं। जो व्यक्ति सत्य पर टिका है वो निर्भय होगा, उसको किसी प्रकार का भय नहीं होगा और ना ही कोई आसक्ति, अगर वो परम सत्य से जुड़ा है। तो इसीलिए भक्ति का मार्ग ये है कि हम सत्य की ओर मुड़ें, और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, देखना चाहिए अपने जीवन में कहां कहां हम झूठ बोलने की आदत डाल रहे हैं या कहां कहां हम झूठ बोल रहे हैं। सत्य बोलना प्रारंभ करना चाहिए। कभी कभी सत्य बोलने से तुरंत थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन आगे चलकर वही सत्य हमें आनंद प्रदान करता है। झूठ बोलने से शुरुआत में जिस समय आप झूठ बोलते हैं थोड़ा बहुत आनंद मिल सकता है, हम बच सकते हैं किसी दुविधा से, लेकिन वो झूठ, एक झूठ के लिए हमें बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसे कहा जाता है कोई एक झूठ बोलता है तो कई झूठ उसको फिर बोलने पड़ते हैं, फिर आदत हो जाती है। कई बार हमने देखा है कि लोगों को आदत हो गई कि अब वो झूठ बोलते ही हैं। कई बार फोन पर हमने कई लोगों को बात करते सुना है कि अभी आपको फोन करता हूं 5 मिनट, और करते ही नहीं है फोन। या जैसे एक बार एक कोई व्यक्ति जोक सुना रहे थे, उन्होंने कहा, उन्होंने एक व्यक्ति को फोन किया, तो इस व्यक्ति को फोन पर बहुत आदत हो गई थी बोलने की, तो उसने कहा ठीक है मैं एक आधे घंटे में घर पहुंचकर आपको फोन करता हूं। तो उसने कहा महाराज मैंने फोन आपको लैंडलाइन पे किया है, आप घर पे से ही बोल रहे हैं। तो वो मोबाइल पर बोलने की इतनी आदत हो गई थी झूठ की, आधे घंटे में घर पहुंच कर मैं आपको फोन करता हूं, घर पे ही थे, लैंडलाइन पर फोन आया था। तो ऐसे ये आदत बहुत हो जाती है हमें, और वही आदत भक्ति में बनी रहती है। हम सोचते हैं कि हम कैसे झूठ बोलकर अपने आप की रक्षा करें, अपनी मान प्रतिष्ठा को बचाए रखें, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करें। तो इसीलिए इससे हमें दूर रहना चाहिए। दूसरा व्यसन वो कहती हैं सीता देवी, वो कहती हैं कि पहला झूठ बोलना है और बाकी दो तो इससे भी खतरनाक है। और क्या है दूसरा? वो कहती हैं परस्त्री गमन। व्यक्ति दूसरे की विवाहिता को जब उसके प्रति गलत भाव रखता है या दूसरे की विवाहिता के साथ संग करता है, ये एक बहुत बड़ा व्यसन है, बहुत अपराध है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमें अन्य की पत्नी को माता के समान देखना चाहिए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु, द्रव्य मतलब धन, परद्रव्येषु लोष्टवत्, हमें जो दूसरे का धन है वो पत्थर कंकड़ के समान देखना चाहिए। तो इसीलिए ये नियम है, और इसीलिए हमारे वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को बड़ा मान दिया जाता है, और स्त्रियों को मान देने की प्रथा को रखते हुए उनको माता के समान आदर दिया जाता है। इसीलिए कहा गया मातृवत परदारेषु, परदारेषु मतलब दूसरे की पत्नी को माता के समान देखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, सारी महाभारत इसीलिए हुई। दुर्योधन द्रौपदी को जो किसी और की पत्नी थी निर्वस्त्र करना चाहता था, तो इसीलिए इतनी बड़ी महाभारत हो गई। तो ये हमें जानना चाहिए कि जिस समाज में स्त्रियों का आदर नहीं होता, स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलता, वो समाज पशु समाज है। इसीलिए हमें स्त्रियों को आदर देना चाहिए। व्यक्ति को अपने ही विवाहिता स्त्री के साथ केवल संग करना चाहिए, और अन्य सभी स्त्रियों को उसे माता के समान देखना चाहिए। हाँ, वैसे अपनी पत्नी को माता के समान नहीं देखना चाहिए। हम लोग कभी कभी हमारी संस्था में देखते हैं कि हमारे संस्था के भक्त अपनी पत्नी को भी माता जी कहकर बुलाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। पत्नी के अलावा हर स्त्री को माता के समान देखना चाहिए, क्योंकि ये जब माता जी संबोधित किया जाता है तो उस आदर से होना चाहिए, नहीं तो ये शब्द ऐसे ही बन जाता है, कोई भी किसी को भी पुकार रहा है माता जी, उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता। तो मातृवत परदारेषु, और तीसरी चीज, तो ये दो चीज वो बताती हैं और साथ साथ वो ये भी कहती हैं श्री रामचंद्र जी को कि आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते। तो तीन चीजों में से पहली चीज तो आप कर ही नहीं सकते, झूठ तो आप कभी हो ही नहीं सकता कि झूठ आपको स्पर्श कर जाए। दूसरी चीज परस्त्री गमन, वो मैं स्वीकार ही नहीं कर सकती कि कभी आपके हृदय में इच्छा भी आएगी किसी दूसरी स्त्री के प्रति। लेकिन ये जो तीसरा है वो शायद आप कर सकते हो, और वो तीसरा है अनावश्यक हिंसा। अनावश्यक हिंसा मतलब जहां जरूरत ना हो वहां किसी को मारना, चाहे वो प्राणी हो चाहे राक्षस हो कोई भी हो, तो उनको मारना ये आप कर सकते हो क्योंकि आपके हाथ में शक्ति है, धनुष बाण है। और इसीलिए उन्होंने वो कथा सुनाई कि जब उस योगी को वो तलवार दे दी गई तो थोड़े समय बाद उसके हृदय में भी हिंसा की भावना बढ़ गई। थोड़े समय बाद उसने भी सोचा कि मुझे भी मारना चाहिए, और वो अनावश्यक हिंसा करने लगा, प्राणियों को मारने लगा। देखिए संग का असर। अच्छा भला योगी था, तपस्वी था, भगवान की भक्ति कर रहा था, केवल इंद्र ने आकर एक तलवार दे दी, कुछ नहीं किया, वो तलवार साथ में रख रख के उसके हृदय में हिंसा की भावना आ गई। तो इसको सीता देवी ये कथा को सुनाती। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता थी, उनको दबाकर नहीं रखा जाता था। यहां देखिए सीता देवी रामचंद्र जी को सुझाव दे रही हैं, धर्म सिखला रही हैं। सीता देवी कहानी स्टोरी सुनाकर कि देखो पूर्व काल में ऐसा हुआ था, आप ऐसा नहीं करना। तो जब श्री रामचंद्र ने यह सुना तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने, आपने जो कहा वो सही है, लेकिन मैंने वचन लिया है कि मैं राक्षसों से, यहां के जो ऋषि मुनि हैं इस वन के, उनका मैं उनकी रक्षा करूंगा। वे मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे याचना की कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हम भी तो आपके राज्य में रहने वाले लोग हैं, तो आप हमारी रक्षा कीजिए। तो इसीलिए मैंने वचन लिया है कि मैं उनकी रक्षा करूंगा। हां अनावश्यक हिंसा मैं नहीं करूंगा, लेकिन इन राक्षसों को तो मुझे मारना ही होगा। तो ऐसे जब कह दिया तो उसके बाद वे लोग फिर अब पंचवटी की ओर बढ़ने लगे। पंचवटी जाते जाते बीच में एक और स्थान में वो लोग गए जिसका नाम है पंचअप्सरा कुंड। ये भी बड़ा सुंदर कुंड है। तो पंचअप्सरा कुंड में भगवान ने वहां पर सुना कि क्या हुआ था। वहां एक ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने फिर पांच अप्सराओं को वहां भेज दिया था। ये इंद्र का पूरा रामायण महाभारत भरा पड़ा है इंद्र के लीलाओं से। जहां भी देखते हैं कि कोई तपस्या कर रहे हैं, इंद्र कुछ ना कुछ किसी को भेज देते हैं। तो पांच अप्सराओं को भेजा। जब श्री रामचंद्र जी उस स्थान पर आए पंचअप्सरा कुंड में, तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बड़े मधुर संगीत सुनाई दे रहे थे। तो उन्होंने पूछा महर्षि मुनियों से, तो उन्होंने बताया कि यहां पर पांच अप्सराएं पांच जल के भीतर बह रही हैं, और उस ऋषि ने उनसे विवाह किया है, और वो पांचों इस समय गायन कर रही हैं जो सुनाई दिए। तो ऐसे कई स्थानों पर होते हुए भगवान पंचवटी की ओर गए। हम लोग रामायण के उन हिस्सों पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं कि भगवान कहां कहां से किस किस स्थान से होते हुए गए। तो पंचवटी की ओर वो जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना। पिछले कल हम लोगों ने सुना था कि कैसे विराद उसका जब भगवान ने वध कर दिया उस राक्षस का, और वो जब अपने स्थान पर जाने वाला था तो उससे पहले उसने प्रार्थना की भगवान से, नमस्तेस्तु भागवतम। उन्होंने कहा कि आपको मेरा नमस्कार है, नमस्तुभ्यं भगवते विशुद्ध ज्ञान मूर्तये। तो उसने भगवान को क्या कहकर संबोधित किया, नमस्तुभ्यं भगवते, हे भगवान आप विशुद्ध ज्ञान मूर्तये, आपका जो स्वरूप है पूर्ण ज्ञान से, और वो भी कैसा ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान। तो विशुद्ध ज्ञान से आप परिपूर्ण हैं। ऐसे उन्होंने प्रणाम किया आत्मा रामाय रामाय सीता रामाय वेदसे। और फिर वे चले गए। तो पूर्ण ज्ञान में है भगवान, लेकिन फिर भी अब जगहों को ढूंढ रहे हैं, पंचवटी कहाँ है रास्ता ढूंढ रहे हैं, जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। तो अब चलते चलते वे एक अचानक उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पक्षी वहां पर है, और जब पक्षी को देखा तो भगवान को लगा कि श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा लगता और एक राक्षस आ गया। ये राक्षस नहीं था, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन भगवान ने देखा और कहा शायद और एक राक्षस आ गया। और फिर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी को कहा, उन्होंने रामचंद्र जी से पूछा आप कौन हैं, तो रामचंद्र जी ने कहा मैं दशरथ का पुत्र हूं। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, और ये थे जटायु। कई बार लोग ये सोचते हैं कि भगवान श्री राम को जटायु केवल सीता के हरण के बाद मिले थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जटायु पहले मिले थे, पंचवटी जाने से पहले जटायु भगवान श्री राम को मिले। तो श्री रामचंद्र जी से जटायु मिले और उन्होंने वर्णन किया, तो रामचंद्र जी ने पूछा आप हैं कौन, आप मेरे पिता के मित्र हैं, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन आप हैं कौन। तो उस समय जटायु ने अपना परिचय दिया, और परिचय देने के लिए उन्होंने पूरा इतिहास बताया, शुरुआत से उन्होंने इतिहास दिया कैसे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, फिर कैसे उनके पुत्र हुए, उन्होंने किससे विवाह किया, ऐसे करते 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 वो कद्रु और विनता की कथा पर आए। कद्रु और विनता आप जानते हैं, जो कद्रु सर्पों की माता है और विनता गरुड़ की। तो विनता के दो पुत्र थे गरुड़ और अरुण, और ये अरुण के पुत्र थे जटायु और संपाति, दो पुत्र। तो जटायु मिले, देखिए भगवान के महान भक्त हैं, अच्छी सेवा करने वाले हैं आगे, लेकिन भगवान कहते हैं, भगवान ने पहले जब देखा तो कहा शायद ये कोई राक्षस है। तो इतने महान भक्त को भगवान ने ऐसा क्यों कहा, ये दिखलाने के लिए कि कभी कभी इस जगत में भक्तों को गलत समझा जाता है, लेकिन भक्तों को चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंत में श्री रामचंद्र श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। तो जटायु ने जब अपना परिचय दे दिया तो जटायु ने कहा कि मैं सीता देवी की रक्षा करूंगा। अभी देखिए अभी कुछ नहीं हुआ है, रावण का कुछ पता नहीं है कि रावण आएगा हरण करेगा, कोई बातचीत नहीं है, लेकिन जटायु ने पहले ही कह दिया कि मैं सीता देवी की रक्षा करूंगा। जब आप, श्री रामचंद्र जी को कहते हैं, जब आप और लक्ष्मण जाएंगे बाहर कहीं पर शायद फल फूल लाने या कहीं और ऐसे, तब मैं रक्षा करूंगा सीता देवी की। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। तो फिर पंचवटी आगे अंदर वे लोग गए, और साथ साथ लक्ष्मण श्री रामचंद्र सीता देवी और जटायु भी उनके साथ गए। तो ऐसे अब सब पंचवटी में पहुंचे। तो अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान पंचवटी में पहुंचे। ये पंचवटी पहुंचते पहुंचते एक बात स्मरण रखिए कि भगवान को कितने वर्ष निकल गए थे वनवास के, किसी को पता, भगवान पंचवटी पहुंच गए चित्रकूट, चित्रकूट से फिर दंडकारण्य में थोड़ा समय रहे, उसके बाद फिर अब पंचवटी। पंचवटी आप जानते हैं कहाँ है, नासिक के पास, नासिक नाम क्यों पड़ा वो भी अभी चर्चा करेंगे आज। तो और चित्रकूट कहाँ है किसी को नहीं पता, चित्रकूट कहाँ है, कारवार के पास कहीं पर नहीं, चित्रकूट उत्तर भारत में है। तो वहां से यहां भगवान आ गए, महाराष्ट्र तक आ गए। तो कितना समय लगा, अब पंचवटी आते आते 10 वर्ष निकल गए थे उनके वनवास के। भगवान वहीं रहे, अलग अलग आश्रमों में घूमते रहे, कभी इस आश्रम में कभी उस आश्रम में, ऐसे 10 वर्ष निकल गए, अब पंचवटी में आए। तो अब यहां से बड़ी महत्वपूर्ण लीलाएं शुरू होंगी, क्योंकि अब समय कम रह गया। कितने वर्ष का वनवास था भगवान को, 14 वर्ष। तो 3-4 साल ही रह गए हैं, तो अब जल्दी जल्दी करना है। तो आते आते 10 साल वहां बिता दिए, आते आते और समय हो गया, पंचवटी में 10 साल बाद में पाते थे, और समय पहले ही हो गया था, बहुत थोड़ा समय रहा था उनके वनवास का। तो अब यहां जब आए, बहुत समय यहां रहे पंचवटी में, तो पहले जब प्रवेश किया उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि कुटिया बनाओ। लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, उन्होंने मिट्टी के दीवारें बनाई, ऊपर बहुत अच्छा छप्पर बनाया। वैसे हम लोग आजकल बिल्डिंगों में रहकर ये जो नेचुरल हाउसेस होते हैं ना, उनको हम भूल गए हैं, उनमें रहने में आनंद नहीं आता, लेकिन उनमें बहुत आनंद है, क्योंकि जो मिट्टी की दीवारें होती हैं ऐसा माना जाता है कि उनमें प्राण होते हैं, हवा आती रहती है ना उसमें से, सीमेंट लगा देते हैं तो कोई हवा नहीं आती है। वैसे उनमें रहना बहुत अच्छा है, स्वाभाविक जीवन बहुत अच्छा है। हम लोग स्वाभाविक जीवन से दूर आ गए। हमें आनंद तब मिलता है जब हम प्राण के साथ में रहें, जैसे हम वृक्षों के पास जाते हैं, नदी के पास जाते हैं। हमें आनंद क्यों आता है? लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं लेकिन हजारों रुपया खर्चा करके वन में रहने जाते हैं, किस लिए? आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? क्योंकि पेड़ों में प्राण है। तो जब हम ऐसे संपर्क में आते हैं जहां प्राण है तो आनंद आता है। इस सीमेंट और लकड़ी में कोई प्राण नहीं दिखाई देते हैं, इसीलिए घर में रहने में आनंद नहीं आता है। व्यक्ति छुट्टियां मनाने बाहर जाता है, अगर आनंद आता होता तो घर में ही छुट्टियां मनाता, क्या चिंता है, घर बंद करें, आराम से छुट्टियां मनाएं, बच्चों के साथ खेलें। लेकिन प्राण बाहर है, इसलिए वृक्ष। इसलिए जब लोग कंट्री साइड या नेचुरल प्लेसेस में जाते हैं, प्राकृतिक स्थानों में जाते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। तो लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर कुटिया बना दी भगवान के लिए, और अब वहां पर वो भगवान के साथ रहने लगे, भगवान के सेवक हैं, सेवा करते हैं भगवान की। जय श्री श्री जगन्नाथ। तो भगवान की सेवा ये लक्ष्मण जी ने अपने जीवन का ध्येय बनाया था। जिस समय लक्ष्मण जा रहे थे, हम लोगों ने श्री रामचंद्र जी का विषय सुना, कौशल्या रोई, सीता देवी ने कहा साथ जाएंगे, लेकिन ज्यादातर रामायण में भी या जब कथाएं भी की जाती हैं तो ना तो सुमित्रा का नाम ज्यादा आता है जो लक्ष्मण की माता हैं, और ना ही उर्मिला का जो लक्ष्मण की पत्नी है, कभी नाम ज्यादा नहीं आता। हम लोग कभी नहीं सोचते कि उनका क्या हुआ होगा। रामचंद्र जी के साथ तो सीता देवी चली गई, लक्ष्मण के साथ उनकी पत्नी नहीं गई थी। तो जब लक्ष्मण जी आ रहे थे और जब निश्चित हो गया, पहले तो रामचंद्र जी ने मना किया था लेकिन बाद में हो गया कि ठीक है जाएंगे, तो अपनी मां को प्रणाम करने गए थे। तो स्वाभाविक है कि मां को प्रणाम कर, जैसे कौशल्या रो रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और क्यों नहीं मेरे प्राण चले जाते इत्यादि। सुमित्रा ने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी लक्ष्मण से, उल्टा उन्होंने कहा कि बहुत भाग्य है तुम्हारा कि अब तुम्हें श्री राम की सेवा मिल रही है। एक बात याद रखना कि आज से राम तुम्हारे लिए दशरथ हैं और सीता तुम्हारे लिए सुमित्रा, उनकी ही सेवा करना, यही तुम्हारे लिए धर्म है। तो ऐसे बताते हैं कि जब भी भगवान राम सोया करते थे, रात को सीता देवी सोती थी, श्री लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, वो खड़े रहते थे रक्षा करने के लिए। और उनकी पत्नी, उन्होंने भी जब इच्छा की, जब बताया कि जा रहे हैं और साथ में जाने की इच्छा की, तो लक्ष्मण ने कहा कि मेरी सेवा में बाधा आ जाएगी, मैं जा रहा हूं वहां रामचंद्र जी सीता देवी की सेवा करने, अगर आपको साथ में लेके जाऊंगा तो मुझे आपका ख्याल रखना पड़ेगा और मेरी सेवा में बाधा आएगी, इसलिए आपको नहीं ले जा रहा हूं। और उसने स्वीकार किया कि बहुत अच्छा, सेवा के लिए जा रहे हो, जाओ। तो इन लोगों का त्याग का वैराग्य, इन लोगों के त्याग का वर्णन हम लोग कभी नहीं करते कि कितना बड़ा त्याग उन लोगों का है। और सुमित्रा का त्याग कब से प्रारंभ हुआ था? जब से उसने गर्भ धारण करने की इच्छा की तब से उसका त्याग प्रारंभ हुआ। जब यज्ञ में वो पायसम लाकर दिया गया, दशरथ महाराज को दिया उस दिव्य पुरुष ने जो यज्ञ की अग्नि से निकला, और कहा कि अपनी पत्नियों में बांट दीजिए, दे दीजिए पत्नियों को, इससे संतान होगी। तो उन्होंने दशरथ महाराज को, कौशल्या और कैकेयी बहुत प्रिय थी, कैकेयी तो बहुत ज्यादा प्रिय थी, कौशल्या बड़ी थी, तो इसीलिए उन्होंने उनको ला कर दिया कि तुम लोग ये लो। तो उस समय अब दोनों को सुमित्रा बहुत प्रिय थी, तो अब दोनों के पास आधा आधा था, आधा कैकेयी के पास और आधा कौशल्या के पास। तो उन्होंने दोनों ने कहा नहीं नहीं सुमित्रा को मिलना चाहिए। तो उन्होंने कैकेयी ने अपना आधा भाग सुमित्रा को दिया, कौशल्या ने अपना आधा भाग सुमित्रा को दिया और कहा तुम खाओ। तो उस समय सुमित्रा ने पहले उसको स्वीकार करने से मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं पहले आप लीजिए। और क्यों लीजिए आप? क्योंकि सुमित्रा की इच्छा थी कि पहले ये दोनों प्रकट हों और फिर मेरे दो पुत्र प्रकट हों जो इन दोनों की सेवा करें। देखिए सेवा भाव, माता के भाव पुत्र में आता है, माता का भाव संतान में आता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है माताओं को अपने सही भाव को बनाए रखना संतान उत्पत्ति के समय। तो सुमित्रा ने उस समय से सोचा था कि मेरे जो दो संतान होंगे वो इनकी सेवा करेंगे, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे संतानों की सेवा। तब से ये भाव, और वही भाव लक्ष्मण में और वही भाव शत्रुघ्न में था। लक्ष्मण ने कभी नहीं सोचा कि मैं राजा बन जाऊं। जब ये घोषणा भी हो गई कि रामचंद्र जी वनवास जाएंगे, तब लक्ष्मण ने ये नहीं सोचा कि ठीक है मेरे लिए कुछ नहीं कहा गया, मैं यहीं रुकता हूं। लक्ष्मण तुरंत तैयार, जहां स्वामी है वहां सेवक है। तो ये भाव सुमित्रा का था। तो अब लक्ष्मण सेवा कर रहे हैं, और वहां पर वैसे सेवाओं में जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो सेवाओं में एक श्रेष्ठ सेवा है भगवान के नाम का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम की महिमा के लिए कैसे ही कोई व्यक्ति कथा सुना रहे थे कि नाम की महिमा क्या है। एक बार एक व्यक्ति यमराज के पास पहुंचा मृत्यु के बाद। यमराज हिसाब ले रहे थे कितना पापी है, क्या क्या किया है। ये लिया जाता है सारा जो हम लोग पाप कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि इसके 13 विटनेस हैं, 13 साक्षी हैं जो हमारे सारे कार्यों को देख रहे हैं। हमें लगता है हमने अंधेरे में छुपकर कहीं कुछ कर दिया, किसी को पता नहीं, साक्षी हैं उसके। तो जब वो साक्षी फिर जब वो मृत्यु के बाद उनको लाया जाता तो यमराज सब देख रहे थे उसका। तो उसने एक प्रश्न किया यमराज जी से कि मैंने जीवन में एक बार भगवान का नाम लिया, उसका क्या फल है आप बताइए, आप अपना बुक खोलकर देखिए क्या फल है उसका। यमराज ने सारी बुक खोल ली, उसमें कुछ लिखा ही नहीं था, क्योंकि यमराज के लिए ये करोगे तो ये है, ये इसके लिए ये दंड है, इसके लिए दंड, लेकिन भगवान के नाम की महिमा उनको नहीं पता। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, एक काम करते हैं हम लोग चलते हैं ब्रह्मा जी से पूछते हैं, मुझे तो पता नहीं है, तो हम ब्रह्मा जी से पूछते हैं उनको पता होगा। ये उन्होंने कहा इंद्र से पूछ लेते हैं, इंद्र राजा हैं। तो वे लोग चले गए। तो जब जाने लगे तो इस व्यक्ति ने कहा कि ऐसे नहीं जाऊंगा, अभी आपका डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है ना, आपको पता नहीं है तो आप जान। जैसे कभी कभी क्या होता था, आजकल नहीं होता, पहले ऐसा होता था कि आप फ्लाइट में जा रहे हैं, आपकी फ्लाइट लेट हो गई या कहीं पर बहुत समय लगना है तो एयरलाइन वाले आपके लिए सारी व्यवस्था करते थे, होटल में ये वो सब उनका करना पड़ता था उनको। तो इन्होंने कहा कि आपके डिपार्टमेंट की तकलीफ है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पालखी में लेके जाओ। तो यमराज जी पालखी उठाकर लेके जा रहे हैं, इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने देखा यमराज पालखी उठाकर ला रहे, कोई बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, पूछा भाई क्या है। तो उन्होंने कहा ये बताओ नाम की महिमा क्या। इंद्र ने कहा मुझे भी नहीं पता, चलो ब्रह्मा जी के पास। तो फिर दोनों पालखी उठा के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा नाम तो महिमा बहुत श्रेष्ठ है, तो अब बताइए उसको क्या फल मिलना चाहिए नाम का। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि क्या फल दे सकते हैं, तो चलो शिव जी के पास जाते हैं। तो शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा नाम की महिमा का गुणगान करना तो बहुत मुश्किल है भगवान की नाम की महिमा, लेकिन उसका फल क्या है वो मुझे नहीं पता, तो चलो भगवान के पास जाते हैं। तब चारों लोग उसको पालखी में उठाकर विष्णु जी के पास पहुंचे। तो भगवान से पूछने लगे कि ये बताइए कि नाम की महिमा का क्या फल है। भगवान ने कहा नाम की महिमा का ये फल है कि आप जैसे चार महान देवता उस व्यक्ति को पालकी में उठाकर मेरे पास लेकर आते हैं, उससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अब इसको यहीं छोड़ दो, आप लोग जाओ। तो ये नाम की महिमा का फल, ऐसे ही कथा सुनाते हैं। तो खैर ये सेवा अब वहां लक्ष्मण जी कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं। और अब वहां पर जब भगवान की सेवा वो कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण लीला अब प्रारंभ होती है। अब रावण के वध की लीला प्रारंभ होती है। तो वहां पर एक समय घूमते घूमते शूर्पनखा आती है। अभी आपको पता है कि कुछ समय पहले हमने कहा जटायु मिले थे, तो जटायु वैसे एक ये पहली बार जटायु मिले थे श्री रामचंद्र जी से, और दूसरी बार मिले थे जब सीता देवी, दूसरी बार की कथा हम लोग जानते हैं कि जब सीता देवी का हरण हुआ। एक लोक कथा है, लोक कथा मतलब जो कहीं प्रमाण में नहीं रहती है, प्रसिद्ध हो जाती है लोगों में ऐसे ही मुंह से बातचीत करके, उसका कहीं आधार नहीं होता, रामायण इत्यादि नहीं रहती। तो एक कथा जटायु के बारे में कही गई है कि जटायु को जब ये पता चला कि जटायु एक समय सुन रहे थे, कुछ ऋषि मुनि नीचे कह रहे थे कि दशरथ के घर चार पुत्र पैदा होंगे, सबसे बड़ा भगवान होंगे स्वयं, फिर उनके अंश अवतार होंगे। जटायु उड़ के गए दशरथ के पास, मित्र थे उनके, दशरथ बड़े दुखी बैठे थे। तो दशरथ से उन्होंने पूछा क्या दुख है, दशरथ ने कहा कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, उससे तुम्हारे चार पुत्र होंगे, लेकिन एक वचन देना मुझे कि अपना सबसे बड़ा पुत्र वो मुझे दे देना, बाकी तीन पुत्र तुम रख लेना। दशरथ ने सोचा क्या चिंता है, अभी तो एक भी नहीं है, चार होंगे, चार में से एक देना है, तीन रख लेना। बोले कोई बात नहीं, दे दिया। तो जटायु ने ले लिया। जटायु ने बताया देखो ऐसे ऐसे यज्ञ करो, चार पुत्र होंगे। दशरथ महाराज ने किया, चार पुत्र हो गए। कुछ समय बाद जटायु आए, रामचंद्र जी बहुत छोटे थे। जटायु ने कहा कि अब मुझे बड़ा वाला पुत्र दे दो। तो आप जानते हैं कि जब रामचंद्र जी जन्म हुआ और उसके बाद से तो इतना आसक्त हो गए थे दशरथ महाराज कि अगर कोई उनसे राम मांगे तो मानो उनके प्राण मांग रहा। आगे चलकर विश्वामित्र ने भी मांगा था तो श्री रामचंद्र जी को देने से मना कर दिया। तब तो जटायु ने कहा, तो अब वो दे नहीं सकते तो उन्होंने मना कर दिया। जटायु ने कहा अरे रघुकुल के हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, आपने वचन दिया है और अब कैसे मुड़ रहे हैं। तो लेकिन दशरथ तैयार नहीं थे। इतने में रामचंद्र जी आ गए, छोटे से बालक, पांव में पैंजनियां डाले हुए, बहुत सुंदर भजन में उनके लिए वर्णन किया गया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनियां। तो रामचंद्र जी आ गए, उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, क्यों मेरे पिता इतने दुखी हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पिता ने वचन दिया था, पूरा नहीं कर रहे हैं। रामचंद्र जी का हो ही नहीं सकता, मेरे पिता वचन दे और पूरा नहीं हो, बताइए क्या वचन। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कहा था और सबसे बड़ा पुत्र था तुम, अब वो मेरे पुत्र होने चाहिए, लेकिन अब ये दे नहीं रहे हैं। तो भगवान राम ने कहा कोई बात नहीं, आज से मैं आपका पुत्र हूं, अगर उन्होंने वचन दिया मैं आज से आपका पुत्र हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि एक पिता को पुत्र की सबसे ज्यादा आवश्यकता कब होती है। तो जटायु ने कहा मृत्यु के समय, क्योंकि जब मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। तो रामचंद्र जी ने कहा ठीक है, जिस दिन आपकी मृत्यु होगी उस दिन मैं आपका अंतिम संस्कार करूंगा, इनकी होगी इनका नहीं करूंगा, मैं इनका पुत्र नहीं हूं, आपका पुत्र हूं आज। और आगे चलकर यही हुआ था ना, जब दशरथ मरे थे तो रामचंद्र जी वहां नहीं थे, भरत ने अंतिम संस्कार किया, लेकिन जब जटायु की मृत्यु हुई तो भगवान ने स्वयं उनका संस्कार किया पूरा, जो भी संस्कार होता है श्री रामचंद्र जी ने किया। तो खैर अब शूर्पनखा का वर्णन करना चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण वर्णन है क्योंकि आज के आधुनिक समाज में बहुत सी शूर्पनखाएं घूम रही हैं। अब आपको आश्चर्य होगा, हमें तो एक भी नहीं दिखी है ना। शूर्पनखा मतलब बड़े 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 आकार, दांत बड़े बड़े, टेढ़ा मेढ़ा शरीर, हमें तो एक भी नहीं दिखती। अभी आपको दिखाएंगे, थोड़ी बहुत सारी घूम रही है शूर्पनखा। तो शूर्पनखा आई वहां पर, रामचंद्र जी के प्रति आसक्त हो गए, रामचंद्र जी को देखा, और बहुत आसक्त हो गई, उसको बड़ा प्रेम हो गया और चली गई रामचंद्र जी के पास। और रामचंद्र जी से उन्होंने कहा, इतने इतने सुंदर युवक को यहाँ इसमें वन में बैठे हुए हो, तो मेरे से विवाह कर लो, मुझसे विवाह करोगे तो बहुत सुखी रहोगे। तो रामचंद्र जी बोले, कौन हो तुम? तो उसने बताया, मैं शूर्पणखा हूँ, रावण की बहन हूँ। नाम सुना है रावण का? रामचंद्र जी को पूछ दिया, ऐसे लिखा, नाम सुना है ना रावण का, मैं उनकी बहन हूँ। कभी कभी लोग, अब रावण की बहन होने में गर्व क्या है? किसी को गर्व क्यों होना चाहिए रावण की बहन होने में? लेकिन उसको बड़ा गर्व था, रावण की बहन हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि विवाह करना चाहती हूं। ये बहुत सुंदर प्रसंग है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इसका वर्णन किया गया है। तो जब आई शूर्पणखा तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो रामचंद्र जी ने कहा कि देखो, मैं तो यहां पर हूं, मेरी पत्नी साथ में है, अब तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें उसके साथ एक दूसरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा, क्या लाभ है? अच्छा नहीं है, तो एक काम करो, वो बैठे हैं ना लक्ष्मण, उसके पास जाओ, उसकी पत्नी नहीं है, मतलब भगवान झूठ नहीं बोल रहे थे, उसकी पत्नी उस समय नहीं थी साथ में, सच बोल रहे थे, तो उसकी पत्नी नहीं है, तुम उसके पास जाओ। तो देखिए, अब ये इतनी ज्यादा उसके हृदय में वो काम की भावनाएं बढ़ गई थी कि उसने कहा ठीक है, चलो राम नहीं तो लक्ष्मण सही। तो लक्ष्मण के पास चली गई और लक्ष्मण वहां बैठे थे आराम से। तो लक्ष्मण को जाकर बोला कि आप बड़े सुंदर हैं, आप मुझसे विवाह कर लीजिए, आपको आपका जीवन सफल हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो लक्ष्मण ने कहा कि देखो, मैं तो दास हूं, अगर तुम मेरी पत्नी बनोगी तो जीवन भर दासी बनकर रहना पड़ेगा, मैं तो कभी स्वामी नहीं बनने वाला हूं, मेरे स्वामी तो वो हैं रामचंद्र जी, और मैं तो हमेशा दास रहने वाला हूं। यही नहीं, जब अयोध्या वापस जाऊंगा तो भी उनका दास बनकर मुझे हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ेगा, और अगर मेरी पत्नी बनोगी तो तुम्हें भी हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ेगा, तुम्हें स्वीकार नहीं होगा, वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, इसलिए रामचंद्र की पत्नी बनो। इधर से उधर वो टेनिस खेलते हैं ना लोग, बॉल इधर से उधर वैसे फेंक रहे थे, रामचंद्र जी ने उधर से, फिर उन्होंने कहा उधर जाओ, रामचंद्र जी से विवाह करो। उसने कहा ये बात तो है, मैं दासी तो बनकर नहीं रह सकती। तो फिर आई रामचंद्र जी के पास कि नहीं, तुमसे ही विवाह करना है। तो उस समय जब सीता देवी बाहर आई तो उन्होंने देखा, तो उसने कहा कि तुम इस स्त्री के लिए मुझसे विवाह नहीं करना चाहते हो, इतनी कुरूप, इतनी बेकार स्त्री। देखिए उस समय आगे चलकर शूर्पणखा जब वर्णन रावण को करेंगी सीता देवी का, तो ऐसा वर्णन करेंगी कि इनसे सुंदर कोई नहीं है। लेकिन अभी बोलती है, ये इस कुरूप स्त्री के लिए तुम मेरे से विवाह नहीं करना चाहते हो, मैं इसको ही खा जाती हूं, काम ही खत्म। मैं इसको ही खा जाती हूं, हिंदी में कहावत है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो इसको ही खा जाती हूं मैं, और फिर तुम मुझसे विवाह कर लेना। तो उस समय जब वो भागी तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा कि लक्ष्मण, ऐसे द्वेषी शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए, मैंने तुम्हारे पास भेजा था, तुमने कुछ किया नहीं, अब जल्दी से कुछ करो। तो लक्ष्मण ने तलवार निकाली और उसके नाक और कान काट दिए। लक्ष्मण को नाक कान काटने में बड़ा आनंद आता है, ताटका के भी काटे थे पता नहीं क्यों। तो नाक और कान काट दिए लक्ष्मण ने, अब नाक कान खून खून निकल रहा है। भागी वो वहां से, गई अपने भाई के पास, खर और दूषण। खर दूषण भी भाई हैं रावण के, तो उस समय वहां उस स्थान में रहते थे जिसको जनस्थान कहते थे। तो उनके पास गई भागती हुई, उनको बताया कि देखो मेरी क्या हालत, किसने की तुम्हारी हालत, एक राम करके। तो उसने अपने 14 सैनिकों को भेजा पहले, खर और दूषण ने, ये 14 राक्षसों को ले जाओ, दिखाओ कौन है, वो मार के ले आएंगे। तो वो चले गए, भगवान राम ने एक ही तीर में 14 को मार दिया, खत्म हो गए 14। फिर गई वापस उनके सामने, फिर रोने लगी। तो खर पूछने लगा, अरे क्या है, अभी तो सब कर दिया, भेज दिया, अब क्यों रो रही हो? उसने कहा उन 14 को तो उसने ऐसे ही मार दिया। अच्छा तो मैं चलता हूं। 14,000 सैनिक लेकर गया वो, 14,000 राक्षस। ये जब हमें ये लीला, जब हम कहते हैं 14,000 राक्षस खर और दूषण आए हैं मारने के लिए भगवान को, तो इस समय राजा कुलशेखर का स्मरण आता है। राजा कुलशेखर जब रामायण की कथा सुना करते थे तो इतना उसमें रम जाते थे कि उनको पता नहीं रहता था, अपने बाहरी चेतना खो बैठते थे, उनको इतना आनंद आता था रामायण सुनने में। राजा कुलशेखर ये आलवारों में से एक हैं। आलवार वो हैं जिन्होंने तमिल भाषा में वेद दिए हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वो वेद मानी जाती हैं। तो कलयुग के प्रारंभ से लेकर एक धीरे 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 करके 11-12 आलवार हुए और उन्होंने ये सब दिए, तो उनमें से एक है आलवार, यानी बहुत महान भक्त, बहुत अच्छा सुंदर उन्होंने ग्रंथ लिखे, उनमें से एक है मुकुंद माला स्तोत्र। प्रभुपाद जी ने उसके कुछ पहले श्लोकों को अनुवाद भी किया है। तो राजा कुलशेखर इनका एक मुकुंद माला स्तोत्र का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक, प्रभुपाद जी बारंबार इसको दोहराया करते थे, और वो ये था, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतं अद्वैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयान समये कफवात पित्तये कंठावरोध निबधो स्मरणं कुतस्ते। राजा कुलशेखर भगवान से कहते हैं, मुकुंद से, कृष्ण से, कि हे कृष्ण, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, आपके चरण कमलों में अभी मेरा मन लगने दीजिए, अभी मैं मर नहीं रहा हूं लेकिन अभी लगने दीजिए। क्यों? प्राण प्रयाण समय, जब प्राण जा रहे होंगे उस समय कफ वात पित्त, ये जो कंठ है कफ वात पित्त से भर जाएगा, बोल नहीं पाऊंगा आपका नाम, स्मरण नहीं कर पाऊंगा, स्मरणं कुतस्ते, तो इसीलिए अभी आपके चरणों का स्मरण करने दीजिए। तो ऐसे राजा कुलशेखर जब रामायण सुना करते थे, उनके राज्य में राज्यसभा लगी हुई है, रामायण चल रही है, पंडित रामायण बोल रहे हैं, तो रामायण का ये प्रसंग वो सुन रहे थे कि रामचंद्र जी अकेले हैं और 14,000 राक्षस अबखर और दूषण आ रहे हैं रामचंद्र जी को मारने। तो रामायण सुनते सुनते वो इतना उसमें मग्न हो जाते थे, जैसे ही उन्हें सुना रामचंद्र जी अकेले हैं, अचानक खड़े हो गए सिंहासन पर, कहा सेना तैयार करो। अब मंत्री सारे सोच रहे, सेना तैयार करो, ये क्या हो गया, कोई आक्रमण नहीं, कुछ नहीं, कथा अच्छी चल रही थी, कहां से सेना तैयार, लेकिन राजा का आदेश है। उस समय के राजा ऐसे हुआ करते थे, आजकल के राजा की तरह नहीं, कानून बनाना है तो पास ही नहीं हो रहा, कई बार वो चल रहा है, लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा से रिटर्न आ गया, ये सब नहीं था, राजा ने जो कह दिया वो कानून, ऐसी शक्ति थी उस समय उनकी। हाँ, राजा भी उस तरह के हुआ करते थे। तो राजा ने कहा कि सेना करो, अब सब क्या करे, सेनापति सेना तैयार करो, सेनापति को आदेश का पालन करना, उसने सेना तैयार कर दी, किसी को पता नहीं जाना कहां है, युद्ध किससे करना है कुछ नहीं पता, बस राजा ने कहा सेना तैयार करो, सेना तैयार हो गई। मंत्री ने पूछ लिया, महाराज जाएंगे कहां, क्या रामचंद्र जी को बचाने जाएंगे कहां पे, जनस्थान में 14,000 राक्षस उनको आक्रमण कर रहे हैं, कैसे मेरे स्वामी को अकेले देखकर उन्होंने सोचा अभी मैं जीवित हूं, मैं रक्षा करूंगा जाके। अब मंत्री सोच रहे कहां जाएंगे, कौन सा जनस्थान, रामायण को होके लाखों साल निकल गए, ये अब कौन सी, किसको, खैर राजा को रोक नहीं सकते, चल दी सारी सेना, राजा आगे आगे घोड़े पर कि मैं आज छोड़ूंगा नहीं, 14,000 राक्षसों को मैं मारूंगा। मंत्री ने सोचा कुछ तो उपाय करे, उसने दो सैनिकों को बुलाया, बोले दूसरे रास्ते से तेजी से जाओ और सामने से वापस आना और जो मैं कहता हूं वो कहना। तो दो सैनिक गए भागते हुए, दूसरे रास्ते से आगे गए, अब यहां राजा पूरा सेना लेके जा रहा है, अचानक उसने देखा ये दो सैनिक उसके सामने से आ रहे हैं, क्योंकि उनको मंत्री ने कहा था पीछे के रास्ते से जाना, तेजी से और सामने से आना, अब सामने से आ रहे हैं तुम दोनों आए सैनिक। तो राजा ने पूछा सैनिक कहां से आ रहे हो, हम जनस्थान से आ रहे हैं। वो जनस्थान से क्या हुआ वहां पर, वहां तो 14,000 राक्षसों ने आक्रमण किया, हाँ श्री रामचंद्र जी ने सबको मार दिया, अकेले मार दिया, हाँ ठीक है वापस चलो, सारी सेना वापस, और वापस जाके क्या है फिर रामायण की कथा शुरू हो गई। तो ऐसे जनस्थान में अब 14,000 राक्षस भगवान को मारने के लिए आ रहे हैं, खर दूषण त्रिशीर बड़े बड़े महारथी वो सब अब मारने के लिए आ रहे हैं। तो फिर युद्ध हुआ, भगवान ने लक्ष्मण से कहा तुम रुको सीता की रक्षा करो, इनको तो मैं ही खत्म करता हूं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं, तुम इधर ही खड़े रहो। तो फिर भगवान ने जाकर 14,000 राक्षसों को मारा, दूषण को पहले मारा, फिर त्रिशीर को मारा, फिर खर को मारा, ये बड़ा युद्ध का वर्णन 3-4 अध्यायों में वाल्मीकि रामायण में किया गया है। तो खर का भी वध कर दिया और ये शूर्पणखा सब देख रही है, कह रही ये क्या हो गया। तो उसमें से उन सब में से एक व्यक्ति बचा था जिसका नाम था अकंपन। अकंपन का अर्थ होता है जो कभी कांपता नहीं है, कंपन यानी कांपना, अकंपन यानी जो कभी नहीं कांपता। और ये अकंपन ने जब देखा श्री रामचंद्र जी का ये शौर्य तो कांपने लगा और भागता हुआ पहुंचा रावण के पास। और रावण को जाके उसने सूचना दी कि एक राम नाम के व्यक्ति ने, साधारण मानव ने, तुम्हारे जितने दोनों भाई और तुम्हारी सारी सेना वहां समाप्त कर दी जनस्थान। रावण ने कहा अकेले कौन है ये, बता ऐसे ऐसे दो मानव हैं वहां पर कर। तो उन्होंने कहा रावण ने मैं अभी जाता हूं, अभी तक शूर्पणखा नहीं पहुंची है। तो रावण ने कहा मैं अभी जाता हूं, मैं जाकर उसका वध करता हूं। तो अकंपन ने कहा महाराज मैंने उनका शौर्य देखा है, अकेले इतने लोग को मार दिया, आप मत जाइए, आप उससे जीत नहीं सकेंगे, आप एक काम कीजिए उसकी पत्नी को उठा लाइए, वो ऐसे ही मर जाएगा, मैंने देखा पत्नी से बड़ा असक्त है, अपनी पत्नी को उठा लाइए वो मर जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो मारीच के पास गए रावण, मारीच को जाकर बोला मारीच एक थोड़ा मेरा प्लान है, थोड़ा योजना है, थोड़ा सहायता करो। तो क्या सहायता करूं, वो एक राम लक्ष्मण नाम के दो मानव आए, कोई अयोध्या के कोई दशरथ के पुत्र हैं, और उन्होंने मेरे जनस्थान में सैनिकों को मार दिया, राक्षसों को मार दिया, तो मैं उनकी पत्नी को उठाना चाहता हूं, तुम एक हिरण बन जाना और तुम उनको दूर ले जाना, मैं पत्नी को उठा लाऊंगा। रावण सुंदर स्त्रियों के प्रति बड़ा आसक्त था, उसको कई श्राप मिले थे, अभी थोड़े समय बाद इसकी चर्चा करेंगे, उसको कई लोगों ने श्राप दिए थे। क्या कारण था कि एक वर्ष तक प्रायः सीता देवी रावण के अशोक वाटिका में रही लंका में, लेकिन रावण उनका स्पर्श नहीं कर पाया, इसका कारण था, उसको कारण अभी थोड़े समय में बताएंगे। तो खैर मारीच से उन्होंने कहा, तो मारीच ने कहा अरे किस व्यक्ति ने तुम्हें ये सलाह दे दी कि तुम रामचंद्र जी की पत्नी का हरण कर लो, कोई शत्रु है तुम्हारा जिसने ये सलाह दी है, कोई तुम सो रहे हो किसी ने तुम्हारे ऊपर पत्थर मार दिया ऐसा हो गया, जानते हो क्या बात कर रहे हो, रामचंद्र जी की पत्नी को उठा के लाओगे, और कौन है वो राम जानते हो, छोटे थे अब तो बड़े हो गए। मारीच कहते हैं छोटे थे तभी वो आए थे वहां विश्वामित्र के यज्ञ में, मैं वहां पर था, मैं आपको याद है विश्वामित्र के यज्ञ में मारीच और सुबाहु दोनों थे, तो वहां पर मुझे उन्होंने एक तीर मारा था, मैं 800 किलोमीटर दूर जाकर गिरा हूं एक तीर से। और इतना ही नहीं और एक बात बताता हूं, एक बार वो अभी दंडकारण्य में अभी कुछ समय पहले थे, मेरी उनसे बहुत शत्रुता थी, मैं एक हिरण का शरीर बनाकर गया था उनको मारने के लिए, फिर एक तीर मारा मैं सीधे समुद्र में जाकर गिरा हूं। और उनको तुम कह रहे हो, जानते हो कौन है वो, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिसने भी तुम्हें कहा है वो निश्चित तुम्हारा शत्रु है, ऐसा मत करो, उनसे तुम हार जाओगे, तुम ही नहीं हारोगे सारा नाश हो जाएगा, और एक स्त्री के लिए तुम इतना करना चाहते हो, क्या फायदा, चले जाओ, तुम्हारे पास कमी है कोई स्त्रियों की, रावण की कितनी पत्नियां थी कोई जानते हैं, हाँ 12,000, 2,000 बढ़ा दिया, 10,000 थे लिमिट, उसका रिकॉर्ड ज्यादा मत करो। तो जहां जाता था वो स्त्रियों को ले आता था, उसका उसको बस स्त्रियां बहुत पसंद थी, तो इसीलिए रावण को उन्होंने मना किया। तो मारीच की बात को मान गए रावण और वापस चले गए कि ठीक है मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, राम सीता का हरण नहीं करूंगा। और फिर जब ये हो गया, उन्होंने मना कर दिया, अब शूर्पणखा पहुंची रावण के पास, शूर्पणखा पहुंची रोते हुए, नाक कटी हुई, कान कटे हुए, रोते हुए जमीन पर लेटने लगी, जमीन पर हाय हाय करने लगी। अब रावण के सामने उसकी बहन ऐसे करे तो रावण तो आश्चर्यचकित है, क्या हो गया इसको। तो उस समय उन्होंने पूछा तो उसने बताया, लेकिन देखिए शूर्पणखा ने पहले तो उसके राजा होने पर धिक्कार किया उसको, कि क्या फायदा तुम्हारे राजा होने का, तुम्हारी सेना को मार दिया, तुम आराम से बैठे हुए हो, कैसे राजा हो, तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ बोल दिया। रावण चुप बैठा है। लेकिन जब शूर्पणखा ने देखा कि रावण के मन में क्रोध नहीं आ रहा, क्योंकि रावण सुन के आया हुआ था मारीच से, मारने वाले नहीं है, जाना नहीं था, तो तब शूर्पणखा ने उसके हृदय में काम वासनाओं को उत्पन्न किया और तब उसने सीता देवी का गुणगान करना शुरू किया। उसने कहा मैं तो तुम्हारे लिए वहां पर सीता को लाने गई थी, देखिए गई थी अपने लिए, लेकिन रावण से कह रही कि मैं वहां गई थी तुम्हारे लिए, मैंने सोचा सीता इतनी सुंदर है, तुम ही उसके लिए योग्य पति हो, ये दो मानव जंगल में रहने वाले इन लोगों के लिए क्यों ये सुंदर स्त्री होनी चाहिए, तुम्हारे लिए लानी गई थी। और उसकी सुंदरता का अगर मैं वर्णन करूं तो कहने लगी कि सारे देव लोगों की देवियां उसके सामने फीकी पड़ जाएंगी, स्वयं लक्ष्मी देवी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो वहां पर आ गई हैं, इतनी सुंदर है। रावण ने जब ये सुना, अभी तक तो शांत बैठा था कि नहीं मारूंगा, नहीं जाऊंगा, लेकिन शूर्पणखा ने बहुत उसके हृदय में इस भावना को बढ़ाया, बहुत सुंदर है, केवल आपके लिए ही योग्य है। और फिर रावण के हृदय में काम वासना बहुत तीव्र हो गई। तो रावण का ऐसा था कि जब रावण कहीं भी जाता था, किसी सुंदर स्त्री को देखता था, तो जबरन हरण कर लेता था, इसलिए कई श्राप मिले। एक श्राप ब्रह्मा जी ने दिया था उसे, एक समय उसने रंभा नाम की एक अप्सरा, उसके साथ उसने गलत कार्य किया था, तो उस समय ब्रह्मा जी ने उसको एक श्राप दिया था कि अगर आज के बाद किसी स्त्री को तुमने बिना उसकी इच्छा के स्पर्श किया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रावण बड़ा घबराता था कि इसके बाद मैं कभी जबरदस्ती किसी के साथ संग नहीं करूंगा। ठीक है, उठा के ले जाना, वो तो राक्षस प्रवृत्ति है, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर पाऊंगा। जैसे वो पहले कर रहा था सभी को जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाना, उसके बाद वो बना नहीं पाए। तो रावण ऐसे कई जगह गए। रामचंद्र जी ने ये बाद में पूछा था कि रावण को रोकने वाला कोई नहीं था, इतना उत्पात मचा रहा था। ये पुलत से मुनि से उन्होंने पूछा था कि ये क्या है, रावण इतना उत्पात मचा रहा था, किसी ने रोका नहीं पहले, क्या पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय नहीं थे? तो उस समय रावण की एक कथा उन्होंने बताई थी पुलत से मुनि। उन्होंने कहा था नहीं, एक व्यक्ति ने रोका था रावण को, और वो थे कार्तवीर अर्जुन। उन्होंने कहा उसने रोक लिया था। कार्तवीर अर्जुन, इसको सहस्त्र अर्जुन भी कहा जाता है, उसके सहस्त्र बाहु थी। तो कार्तवीर अर्जुन एक समय अपनी पत्नियों के, रावण सब जगह जा रहा था, सारे राज्य में जाकर चुनौती देता, मुझसे युद्ध करो नहीं तो मेरे अधीन रहो। तो कोई युद्ध करते हरा देता या कोई ऐसे ही स्वीकार कर लेते उसको राजा। कार्तवीर अर्जुन के राज्य में आया, उनको पूछा कि कहां है तुम्हारे राजा, बुलाओ उनको, बोलो रावण आया है। तो उनके मंत्री ने कहा खड़े रहो थोड़ा समय, अभी हमारे राजा बिजी हैं। वो क्या बिजी हैं? वो थोड़ा अपनी पत्नियों के साथ आनंद ले रहे हैं नदी में। तो रावण को क्रोध आ गया, बताइए रावण त्रिलोकेश्वर, उसको आया उसको बोला खड़े रहो दरवाजे पर, मंत्री भी इतने शक्तिशाली थे। तो रावण को गुस्सा आ गया, वो चला गया वहां पर और देखा कि कहां नदी, नदी के पास गया। खैर उसका संध्या वंदन का समय हो गया था, वो शिव जी की पूजा किया करता था, उसके पास एक शिवलिंग था, तो उसने शिवलिंग स्थापित किया नदी के पास और पूजा करने लगा। और उधर थोड़ी दूर पर कार्तवीर अर्जुन वो खेल रहा था नदी में, तो उसने अपनी पत्नियों को अपना शौर्य दिखाने के लिए अपने हाथों से नदी का बहाव रोक दिया कि अब नदी आगे नहीं जाएगी। तो आगे नहीं जा रही थी तो पीछे बढ़ने लगी, और बढ़ते बढ़ते वो पानी पूरा शिवलिंग पे आने लगा जहां शिव ये बैठा हुआ रावण पूजा कर रहा था। तो रावण ने देखा, मंत्रियों की ओर देखा, कौन है ये, बना करो उसको, जाओ, ये क्या हो रहा है? वो लोग कैसे मना करें, जाकर देखा तो वो तो इतनी शक्ति की जिसने हाथों से नदी को रोक दिया। तो ऐसे जब रावण को बहुत गुस्सा आया कि मेरी पूजा में किसने बाधा डाली, तो वो गया वहां पर कार्तवीर अर्जुन को और उसने चुनौती दी कि है शक्ति तो बाहर आकर युद्ध लड़ो मुझसे। तो कार्तवीर अर्जुन ने अपनी पत्नियों से कहा इधर ही रहना, थोड़ी देर में आता हूं, इसको हरा के आता हूं थोड़ा। और कार्तवीर अर्जुन गए और हराया, बंदी बनाया, अपने मंत्रियों को बोला ले जाके जेल में डाल दो इसको, और फिर अपना आनंद लेने लगे। इतने शक्तिशाली थे कार्तवीर अर्जुन। वो तो बाद में पुलत्स्य ऋषि ने जाकर उनको छुड़ाया, कि नहीं मेरा प्रपौत्र है, मेरे पुत्र का पुत्र है, छोड़ दो उसको, तो तुरंत छोड़ दिया क्योंकि ऋषि मुनियों का बहुत आदर करता था। लेकिन एक ही व्यक्ति था जिससे बंदी बनाकर उसको अंदर रख, दूसरे थे वाली सुग्रीव के भाई। एक बार जब वाली तपस्या कर रहा, अपनी संध्या वंदन कर रहा था, तो संध्या वंदन के समय बोला नहीं जाता, तो रावण पीछे से आ रहा, क्योंकि उसको पता था कि वाली की बड़ी शक्ति है, तो पीछे से आ रहा था, वाली को पता चल गया, और जैसे ही रावण आया वाली ने उसको बगल में दबा लिया ऐसे, तो संध्या वंदन कर रहे इधर आए और इधर दबा लिए, तो रावण का ऐसे गला लटक गया और रावण को ऐसे पकड़ा था, पूरा अपना संध्या वंदन करते रहे। ऐसा वर्णन है कि वाली संध्या वंदन अलग अलग समुद्रों में करता था, मतलब वो कभी कन्याकुमारी और फिर वहां से बद्री का आश्रम वगैरह, ऐसे चारों पूरा भारत का घूम के आ गया था, और रावण लटका रहा साथ में। और उसके बाद जब उसका संध्या वंदन पूरा हो गया, तब वाली ने रावण को पूछा, बताओ क्या बात है, कौन हो तुम? तो रावण ने कहा, कोई नहीं, बस आपसे मित्रता करना चाहता। रावण की शक्ति नहीं थी कि वाली को कहे कि युद्ध करो। तो ऐसे कई लोगों से रावण, एक दो लोगों से परास्त भी हुए थे। तो खैर, अब रावण के हृदय में बहुत ज्यादा इस भावना को बढ़ा दिया, इस काम वासना को। और कैसे उसके बाद रावण ने सीता देवी के हरण को किया, और कैसे ये आजकल हम वर्णन करना चाहते थे, मॉडर्न आधुनिक समाज में कैसे ये शूर्पणखाएं फैली हुई हैं, तो इसका वर्णन अगली बार करेंगे, आज समय नहीं है। लेकिन अगली बार ये वर्णन होगा कि ये जो शूर्पणखा है आज भी घूम रही है, और कैसे इस आधुनिक समाज में ये रावणों को प्रकट करा रहे हैं, और उससे क्या नुकसान समाज पर हो रहा है, और उसको हमें कैसे बंद करना चाहिए, इसका वर्णन हम अगली बार करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा कीजिए, समय ज्यादा हो गया है, इसलिए केवल कीर्तन करेंगे अभी 5-10 मिनट।